Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmanand Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Atharva Vediya Brahman Bhag ki Prashnopanishad ka vichar Pravachan Satra mein hum log kar rahe hain. इस उपनिषद के द्वितीय प्रश्नात्मक प्रकरण के 11वें मंत्र का विचार हम लोग कल कर रहे थे, शुरू हुआ था. द्वितीय प्रश्न तथा तृतीय प्रश्न के माध्यम से अपर ब्रह्म विद्या के उपासनात्मक अंश को स्पष्ट किया जा रहा है. अपरा विद्या, कर्म तथा उपासना इन दो विभागों में विभक्त है. कर्म का विस्तार से प्रतिपादन कर्म कांड में हो गया, वह माना जाएगा अपरा विद्या के कर्मात्मक अंश का स्पष्टीकरण. उपासनात्मक जो अंश है अपरा ब्रह्म विद्या का, उसका स्पष्टीकरण करने के लिए प्रश्नोपनिषद में दो प्रकरण हैं, द्वितीय प्रश्न तथा तृतीय प्रश्न और उनके उत्तर रूप. और प्रथम प्रश्न के द्वारा उभय प्रकार की अपरा विद्या के फल का वर्णन हुआ है. प्रथम प्रश्न से द्वितीय प्रश्न में उपासनात्मक अपरा विद्या में अपेक्षित उपास्य प्राण के गुणों का वर्णन हो रहा है. प्राण में गुण बताए जा रहे हैं, सर्वात्मत्व, सर्वाश्रयत्व, प्रजापतित्व आदि अनेक गुण प्राण के यहां पर बताए जा रहे हैं. तो उनमें ये बताया गया कि प्राण ही इंद्र है, का अर्थ है परमेश्वर है, नौ मंत्र में बताया गया. और प्राण ही संहार काल में रुद्र रूप धारण करके जगत का संहार करता है, और स्थिति काल में विष्णु आदि रूप धारण करके जगत की स्थिति का हेतु बन जाता है यह प्राण ही. और प्राण सूर्य रूप से निरंतर गतिमान हो रहा है अंतरिक्ष में. और किस लिए गति है सूर्य की, तो दिन और रात्रि में संपन्न होने वाले व्यवहारों को संपन्न करने के लिए. यदि दिन रात नहीं होंगे तो दिन में होने वाले व्यवहार, रात्रि में होने वाले व्यवहार ये अलग अलग संपन्न नहीं हो पाएंगे. और दिन रात के लिए जरूरी है सूर्य का उदय और अस्त, और उदित होने के बाद सूर्य अस्त होने के लिए अंतरिक्ष में चलता रहता है पूर्व से पश्चिम के ओर. ये उदय और अस्त के बीच वाला समय माना जाता है दिन. उसमें होने वाले जो व्यवहार वह प्राणी संपन्न कर लेते हैं इस समय उदय और अस्त के बीच में. अस्त होने के बाद भी हम तो विश्राम करते हैं, लेकिन सूर्य विश्राम नहीं करता. फिर हमारे दूसरे दिन के व्यवहारों की उपपत्ति के लिए सूर्य का उदय होना आवश्यक है, इसलिए वह विश्राम किए बिना ही उदय होने के लिए अस्त के बाद चलता रहता है, चलता रहता है. उदय होकर के फिर दूसरे दिन के व्यवहार प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार ये दिन रात सूर्य का गमन चलता रहता है। किस लिए चलता रहता है कि उदय अस्त रूप क्रिया संपन्न करने के लिए। और ये उदय अस्त किस लिए है? सूर्य के दिन रात का विभाग करने के लिए। दिन रात का विभाग एक ही काल का क्यों किया जा रहा है? हमारे अलग अलग व्यवहार की सिद्धि के लिए अलग अलग समय निश्चित किया गया। तो इस प्रकार ये सर्व व्यवहार हेतुत्व सूर्य बनकर के प्राण में एक गुण बताया गया। तो प्राण में ही अन्नदातृत्व गुण भी है, वही पर्जन्य बनकर के बरसता है, तो पर्याप्त अन्न प्रजा के स्थिति का हेतुभूत प्रजा को प्रदान करता है। इस प्रकार ये सुखदातृत्व अन्नदातृत्व यह गुण प्राण में है ये बताया गया। और प्राण का गुण बताया जा रहा है कि वह स्वभावतः शुद्ध है, उसमें अशुद्धि स्वाभाविक है नहीं। संस्कार होता है दो प्रकार का, एक कोई अशुद्धि विद्यमान है किसी वस्तु में तो उसे दूर कर ले, हटा दे, तो माना जाता है दोष अपनयन रूप संस्कार उस वस्तु का संपन्न हुआ, दोषापनयन रूप संस्कार को संपन्न कर लिया, वो संस्कार्य हो गई वस्तु जिसमें से दोष को हटाया, उस वस्तु को कहा जाता है संस्कार्य वस्तु। और किसी में कोई गुण नहीं है उसका आधान उसमें प्रदान करना, तो माना जाता है कि गुणाधान रूप संस्कार उस वस्तु का संपन्न हुआ, तब भी संस्कार्य हुई वस्तु। लेकिन प्राण तो स्वभावत ही इन गुणों से संपन्न है, इसलिए ऊपर से प्राण में गुणों को स्थापित नहीं करना पड़ता। तो गुणाधान रूप संस्कार प्राण का नहीं होगा, और प्राण स्वतः शुद्ध होने से उसमें अशुद्धि का नाम निशान न होने से प्राण का दोषापनयन अशुद्ध्यादि दोषापनयन रूप संस्कार भी नहीं होगा। जिसका संस्कार नहीं होता उसे कहा जाता है व्रात्य। तो 11वें मंत्र में प्राण को बताया गया कि हे प्राण आप व्रात्य हो, का मतलब संस्कार योग्य नहीं हो। संस्कार योग्य क्यों नहीं है? इसलिए कि संस्कार करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? कि स्वभावतः ही गुणों से संपन्न हो, इसलिए गुणाधान रूप संस्कार आपका नहीं हो सकता। जिसमें गुण नहीं है उसमें गुण स्थापित किए जा सकते हैं, आप में तो स्वभावतः ही है, और दोष है ही नहीं इसलिए दोषापनयन रूप संस्कार भी नहीं हो सकता। इसलिए आप व्रात्य हो यानी स्वभावतः शुद्ध हो। स्वाभाविक शुद्धि नाम का गुण व्रात्य इस पद से प्राण में बताया गया उपासना के लिए कि व्रात्यस्त्वम। इसके बाद ये कहा जा रहा है 11वें मंत्र में ही कि हे प्राण त्वम एकर्षि सन विश्वस्य अत्ता। तो एक ऋषि एक नाम है अथर्व वेदियों के आहनीय अग्नि को एकर्षि कहा जाता है। अथर्व वेद जिनका है और उस अथर्व वेद के द्वारा प्रतिपादित प्रकार से जो प्रतिदिन हवन करते हैं, यज्ञादि करते हैं, उनके लिए उनके घर में जो आवनीय अग्नि होता है उसका नाम है एकर्षी। एकर्षी नाम वाला अग्नि है, एक ऋषि ये अग्नि का नाम है। और आवनीय अग्नि क्या करता है कि उसमें प्रदत्त जो हवि है उसे ग्रहण कर लेता है। तो इसलिए कहा गया कि विश्वस्य अत्ता, हे प्राण, आप ही अथर्ववेदियों के यहां एकर्षी नामा अग्नि बन करके उनके द्वारा दी जाने वाली समस्त हवि के अत्ता हो। अत्ता कहते हैं ग्रहण करता को, स्वीकार करने वाले को। सारी हवि को आप ग्रहण कर लेते हो, लेकिन प्राण रूप से नहीं, एकर्षी नामक अग्नि रूप से। और आप, विश्व शब्द का अर्थ होता है सब, तो विश्वस्य यानी सब के सतपति हो। सतपति में सत शब्द का विद्यमान भी अर्थ होता है, तो जितने भी विद्यमान यानी भावात्मक पदार्थ हैं उनके संरक्षक हो, पति हो, पालक हो, एक अर्थ निकलेगा सतपति शब्द का। तो सभी भावात्मक पदार्थों के संरक्षक विश्वस्य सतपति। और सत शब्द का अर्थ साधु भी होता है, सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते। गीता में कहा गया ना कि सत अर्थ में और साधु भाव अर्थ में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सत साधु का अर्थ होता है जो शास्त्रीय गुणों से संपन्न है, आचरणों से संपन्न है, सज्जन है, उसे साधु कहा जाता है, सद्भाव कहा जाता है। तो साधु पति का अर्थ होगा, पति यानी संरक्षक। संरक्षक होते हैं दो प्रकार के, एक संरक्षक होता है जो रक्षक ही भक्षक बन जाता है, वो असाधु संरक्षक माना जाएगा, अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन न करने वाला, जिसकी सुरक्षा में लगा है उसकी ठीक से सुरक्षा न करना मनोयोग से, उसे माना जाता है असाधु पति, असत पति कहलाएगा वो, असत संरक्षक। और सत संरक्षक होगा, अच्छा संरक्षक उसे माना जाएगा जो अपने शरीर में प्राण है तब तक अपने संरक्षणीय जो है, जिसकी सुरक्षा में लगा है, उसकी ठीक से सुरक्षा कर लेता है, अपनी बुद्धि मन और सारी शक्ति का उपयोग, जिसकी सुरक्षा में लगा है उसकी सुरक्षा के लिए करता है, उसे माना जाता है सतपथि, कर्तव्यनिष्ठ, अपने कर्तव्य का ध्यान रख करके उसे ठीक ठीक करने वाला, उसे कहते हैं सतपथि। तो ये विश्वस्य सतपति ही प्राण, विश्व यानी सब का सतपति है। हम यानी किसी की भी सुरक्षा में प्राण कोई भी कमी नहीं बरतता, असावधान नहीं रहता, हमेशा सतर्क रहता है, हमेशा अलर्ट रहेगा, उसे कोई घटना घटने के बाद में अलर्ट रहने की जरूरत नहीं होती, हमेशा ही अलर्ट रहता है। इसलिए उसकी सुरक्षा में जो है उसे कोई खरोच भी नहीं पहुंचा सकता, इसे कहा जाता है सतपति। तो प्राण सतपति, इसलिए रात में गहरी नींद में आप हम सो जाते हैं, लेकिन उस समय भी कोई प्राण आपकी सुरक्षा में लगा हुआ रहता है, इसलिए आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। प्राण संरक्षक है ना, वो जगता रहता है, वो कभी थकता नहीं है। अन्यत्र आता है प्राण के उसमें कि बाकी इंद्रियां तो थक जाती है, वाघ आदि मन भी थक जाता है, थक जाते हैं तो फिर अपना अपना काम करना बंद करते हैं, सो जाते हैं आराम से। और प्राण कभी थकता नहीं है, वह बिना थके निरंतर एक बार ड्यूटी संभाल लेता है। तो इस शरीर से जब निकलना होता है, अंतिम श्वास पूरा हो जाता है इस शरीर का, तभी वो काम करना बंद करता है। फुल टाइम सेवक है, इसलिए कहा कि आप सतपति हो, प्राण हमेशा कार्य करता रहता है। बंद हो जाए, थोड़ा विश्रांति प्राण को देना चाहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाए जीना, आपका व्यवहार करना। तो विश्वस्य सतपति ही, और आगे कहते हैं कि वयम आद्यस्य दातार, आप हमारे अच्छे संरक्षक हो, इसलिए तो हम आपका जो आद्य है, आद्य कहते हैं अदन अर्ह, अदन योग्य पदार्थ को, अदन कहते हैं भक्षण को, अदभक्षणे धातु से आद्य बनता है ना, का अर्थ निकलता है आपका जो भोज्य है, आपका जो भक्षणीय है, उसे हम दातारह आपको प्रदान करने वाले हमेशा बने। रूपादि जो भोग्य पदार्थ हैं, इन पदार्थों का चक्षुरादि इंद्रिया ग्रहण करती है, उन्हें अंदर पहुंचाती है, और उनका उपभोग कौन करता है? तो पहले बताया था कि प्राण ही करता है। प्राण के लिए ही चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा ये सारी प्रजा भेंट प्रदान करती है रूपादि विषयों की। इसलिए वागादि इंद्रिया जो भी अपना अपना विषय ग्रहण करके अंदर पहुंचाती है, वो किसके लिए पहुंचाती है? प्राण के लिए। तो आद्य शब्द का अर्थ है प्राण का भोग्य। तो प्राण के जो भोग्य पदार्थ हैं, उन्हें हम दातारह देते रहे
आपको। तो
प्राण ऐसा जड़ नहीं है पत्थर के तरह। हाँ, चेतन की चेतन का प्रतिनिधि है ना, आत्मा का प्रतिनिधि है। इसलिए भूख प्यास किसका धर्म है?
प्राण का।
प्राण का ही है ना, प्राण ही खाता है, प्राण ही पीता है, तो वो भी तो उपभोग है, वो करता है कि नहीं प्राण? और आत्मा तो निर्विकार है, वो भी भोक्ता नहीं बन सकता, भोक्ता बनेगा तो फिर विकारी हो जाएगा, तो कौन भोक्ता है फिर? हाँ, तो प्राण ही भोगता है और प्राण के भोग्य वस्तुओं को जो जो भी प्राण को अच्छे लगते हैं वे हमारा अच्छा संरक्षक हैं, तो उसे प्रदान करने वाले हम हमेशा बने। ये वागादि इंद्रिया कह रही है कि वयम आद्यस्य दातार। क्यों? तो कहते हैं पुत्र का कर्तव्य होता है पिता को उसकी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना। आप हमारे पिता हैं, तो पिता त्वम नह, नह का अर्थ है अस्माकम। हे मातरिस्वन, प्राण का संबोधन है कि हे मातरिस्वन आप हमारे, नह का अर्थ होता है हमारे पिता हो। जिस कारण से, उस कारण से हमारा कर्तव्य, ये हमारा कर्तव्य निर्वहन करने में हम आपके अनुग्रह से समर्थ बने। आप में तो स्वाभाविक शक्ति है, इसलिए आप हमारे सतपति हो। आपका कर्तव्य तो आप अच्छी तरह से निर्वहन कर रहे हो, हमारी सुरक्षा कर रहे हो, लेकिन हम भी हमारे कर्तव्य का ठीक से निर्वहन कर सके इसकी योग्यता आप अपने अनुग्रह से हमें प्रदान करें। इस दृष्टि से कहा कि आप हमारे पिता हो और हम आपको आपकी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले हमेशा बने। वयम अन्नस्य दाता आद्यस्य दातारः भवेम। तो इस प्रकार यहां पर प्राण का गुण बताया गया। एक तो हवि ग्रहीतृत्व अत्रित्व और सबका संरक्षक, सबका पिता, सर्वपितृत्व, एक गुण बताया गया। वागादि जब आपस में विवाद कर रहे थे ना, और अपनी अपनी श्रेष्ठता की सिद्धि के लिए अभिमान पूर्वक कह रहे थे कि शरीर रूपी प्रजा का धारण तो हम ही करते हैं, हम ही करते हैं। प्राण ने कहा कि इस प्रकार का अभिमान मत करो, वस्तुतः तो शरीर का धारण करके मैं रखता हूं, मैं सबका आश्रय दाता हूं, तो शरीर को भी मैंने ही आश्रय दे रखा है, मैं ही धारण करता हूं। लेकिन प्राण के इस वाक्य पर विश्वास नहीं हुआ ना वागादि को, पहले आया था, और प्राण ने उनके शारीरिक हाव भाव से समझ लिया कि ये मेरे वाक्य के प्रति अश्रद्धा व्यक्त कर रहा है, इसलिए प्राण ने ये सोचा कि एक बार इनको दिखाई दे कि मैं ही शरीर को धारण करता हूं और तुम लोग तो केवल अभिमान करते हो, इसलिए निकलने की तैयारी करने लगा ना, और शरीर को त्यागता हुआ सा दिखाया, उत्क्रमण करता हुआ सा दिखाया प्राण ने। और जैसे ही प्राण ने इस शरीर से निकलने का नाटक किया, तो फिर वागादि का भी अपने अपने गोलकों में रहना असंभव सा हुआ, उनको भी निकलना ही पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनको भी कोई खींच रहा है। तो फिर प्राण की स्तुति में लग गए हैं ना, तो इसलिए यहां पर 12वें मंत्र में बताया जा रहा है कि आप उत्क्रमण मत करो, उत्क्रमण करने से हम लोग अस्थिर हो जा रहे हैं, और आप तो हमारे पिता हो ना, हाँ आप तो हमारे पिता हो यानी संरक्षक हो, जब तक इस शरीर में रहने का शरीरधारी का प्रारब्ध है तब तक हमारा इस शरीर में रहना आवश्यक है, और आप चले जाओगे तो हम रह नहीं सकते, इसलिए हमें इस शरीर में बसाए रखने के लिए आप इस शरीर से उत्क्रमण मत करो, इस शरीर में बने रहो, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं बारहवें मंत्र में। याते तनुर्वाची प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे याच चक्षुषी याच मनसी संतता शिवां ताम कुरु मोत्क्रमी। तो हे प्राण, इस पद की अनुवृत्ति पूर्व वाक्य से ले आना, पूर्व मंत्र से। तो ये कह रहे हैं कि हे प्राण, ते या तनु वाची प्रतिष्ठिता ताम शिवाम कुरु, ऐसा एक वाक्य बनता है। इसका अर्थ होता है कि आपकी तनु यानी एक स्वरूप, तनु कहते हैं ऐसे शरीर को, शरीर यानी स्वरूप, तो प्राण इस शरीर में पांच विभागों में विभक्त होकर के रहता है ना, तो एक प्राण का अपानात्मक स्वरूप है, एक वृत्ति है अपान वृत्ति, और वो कहां है, वाक में है, वाग इंद्रिय के रूप में अपान वृत्ति अवस्थित है। इसलिए कहा कि ते तनु या वाची प्रतिष्ठिता, यहां वाची शब्द से लेना वाग इंद्रिय का गोलक, तो वाग इंद्रिय के गोलक में वाग रूप से स्थिता जो आपकी तनु है, रूप है एक, वो कौन सा, अपानात्मक रूप, और उस अपान वृत्त्यात्मक रूप को आप शिवाम कुरु, उसे तो आप शिव स्वरूप बनाओ। शिव स्वरूप बनाने का अर्थ देव करना नहीं, कहीं भाषा में मरे हुए को कहा जाता है कि वो देव हो गया, और जो शिव भक्त होंगे उनके लिए कहा जाता है शिव स्वरूप हो गया। तो ऐसे यहां शिवाम गुरु का अर्थ शिव रूपा करो का अर्थ मार डालो ऐसा नहीं, शिव शब्द का अर्थ है यहां पर कार्य योग्य, शिव शब्द का अर्थ है एक सुख भी होता है ना, आनंद भी होता है, कल्याण भी होता है, तो कल्याण करने योग्य आपके उस वाक में स्थित रूप को बना लो। कल्याण करने योग्य रूप कब माना जाएगा, कार्य करने योग्य होगा तब। कल्याण है सुरक्षा, इस शरीर में, शरीर का यदि स्थिति काल है, मृत्यु काल नहीं है, तो शरीर में वाग इंद्रिय का बने रहना ये माना जाता है उसका शिव होना, कल्याणकारी होना, उसकी प्रतिष्ठा होना, उसकी सुरक्षा होना। तो जो आपका एक वाक में अपानात्मक रूप है उसे शिव स्वरूप कर दो का अर्थ है कार्य करने में सक्षम बना दो, शिवान गुरु का अर्थ है उस तनु को आप कार्य में सक्षम बना दो, शिवान गुरु का अर्थ है ताम शिवान गुरु, जो वाणी में आपका स्वरूप है उस स्वरूप को शिव बना दो यानी कार्यक्षम बना दो। और कार्यक्षम कब होगा, जब वो अपने गोलक में रहेगा, कोई भी इंद्रिया जब वो तो तत्व होने के कारण एक बार सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होती है और बाद में महाप्रलय तक इंद्रिया वैसी की वैसी रहती है, स्थूल शरीर तो असंख्य बार बदलते हैं लेकिन इंद्रिया कोई नहीं बदलती, वो वही रहती है, लेकिन एक स्थूल शरीर छोड़ा दूसरा स्थूल शरीर धारण नहीं किया इसके बीच में किसी भी इंद्रिय का कोई भी व्यापार नहीं होता, कोई क्रिया नहीं होती।